दानियल अध्याय तीन। दानियल अध्याय तीन में हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर परमेश्वर के अस्तित्व को चुनौती देता है। याद करें कि उसने अपने सपने में सोने के सिर वाली मूर्ति देखी थी। तू सोने का सर है। उस मूर्ति की छाती चांदी की थी, जिसका अर्थ है उससे छोटे मादी फारसी साम्राज्य के द्वारा बाबुल पर विजय। दानियल अध्याय तीन पद एक। नबूकदनेस्सर राजा ने परमेश्वर और उसके दर्शन को चुनौती देते हुए सोने की एक मूरत बनवाई, जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। आप यहां 66 में जा रहे हैं। दानियल अध्याय तीन पद एक से लेकर 6 तक। और उसने उसको बाबुल के प्रांत के दूरा नाम मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरिये ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको ये आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वो उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। अतः नबूकदनेस्सर के साथ खिलवाड़ अच्छा नहीं होता था। चयन आपका था, या तो उस मूर्ति को दंडवत करो या धधकते भट्टे के भीतर डाल दिए जाओ। दानियल अध्याय तीन पद सात। इस कारण उस समय जो ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। यहां नबूकदनेस्सर वैसा ही बन गया जैसा मसीह विरोधी, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में पढ़ते हैं, जिसने एक मूर्ति बनवाई थी। उसने इस पशु या मूर्ति को बोलने की शक्ति दी थी। उसने इस बोलने वाली मूर्ति को दंडवत करने का आदेश दिया। हम अपने विज्ञान और विशेष करके कंप्यूटर की क्षमता की तरक्की के बारे में बहुत पढ़ते हैं। ऐसे कंप्यूटर के बनाने के बारे में भी बात की जा रही है जो मनुष्य से अधिक चतुर होगा, और वो एक दिन अपनी बुद्धि के कारण कदाचित मनुष्य पर राज करेगा। सामान्य कंप्यूटरों में तो पहले से ही चिप का विकास हो चुका है। स्वर चिप ये छोटे कैलकुलेटर के बराबर होती है, जिसे आप खरीद सकते हैं और दिए हुए नंबर को या संख्या को कंप्यूटर में डाल सकते हैं। तब ये आपको वो बोलकर और दिखाकर जवाब देगा। अगर आप गलत घुमाएंगे तो उद्घोषक आपसे कहेगा, आपने क्या नंबर मिलाया है? ये स्वर कंप्यूटर का है जिसमें बोलने की शक्ति है। पिछले कुछ सालों तक ये सोचना भी एकदम असंभव था कि ऐसी कोई मूर्ति भी होगी जिसके पास सोचने और बोलने की ताकत होगी। ये कंप्यूटर हो सकता है। मैं नहीं कहता कि वही है, परंतु हो सकता है कि पाप का मनुष्य इसे बनाएं। ये उच्च तकनीक का एक कंप्यूटर होगा जो इस दुनिया पर राज्य करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। नबूकदनेज़र ने एक मूर्ति बनाई, 60 हाथ ऊंची और 6 हाथ चौड़ी बनाई और आज्ञा दी कि हर एक मनुष्य उसकी आराधना करे और जो इस मूर्ति की आराधना करने से इनकार करेगा वो मार दिया जाएगा। पाप का पुत्र या पाप का आदमी, वो पशु जो समुद्र से बाहर निकलता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13, वो मूर्ति बनाता है और सबको उसकी आराधना करने की आज्ञा देता है, और अगर कोई उस मूर्ति का इनकार करे तो उसके पास उसे मार डालने की शक्ति थी। हम यहां एक रोचक समानता देखते हैं। यहां 3 नौजवान शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने मूर्ति को दंडवत करने से इनकार कर दिया, परंतु परमेश्वर ने उन्हें आश्चर्यजनक तरीके से आग से बचाया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम पढ़ते हैं परमेश्वर 144,000 लोगों को उस महाक्लेश के दिनों में अपने न्याय की आग से जो पृथ्वी पर आएगी बचाकर सुरक्षित अपने साथ ले जाएगा। अब सवाल यह है कि जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में नबूकदनेस्सर को बताया गया कि वे उस मूर्ति को दंडवत नहीं कर रहे हैं, तब दानियल कहां था? क्या आप सोचेंगे कि दानियल ने उस मूर्ति को दंडवत किया होगा? मैं सोचता हूं नहीं। दानियल के हृदय में एक उद्देश्य था। उसने राजा का भोजन खाकर अपने को अपवित्र नहीं किया। परमेश्वर के प्रति उसकी वाचा अटल थी। मुझे विश्वास है कि दानियल ने दंडवत नहीं किया था। तब शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ दानियल की शिकायत क्यों नहीं हुई? स्पष्ट है कि दानियल वहां मौजूद नहीं था। हो सकता है वो राज्य के किसी काम से बाहर गया होगा, क्योंकि अगर वो वहां होता तो ये निश्चित है कि वो भी उस मूर्ति को दंडवत नहीं करता। यहां दानियल चर्च का प्रतीक है। जब महाक्लेश या परमेश्वर का न्याय आएगा, तब मसीह विरोधी लोगों को अपनी बनाई हुई मूर्ति की उपासना और दंडवत करने की आज्ञा देगा। तब कलीसिया वहां नहीं होगी, वो वहां धधकती भट्टी में जलने के लिए नहीं होगी। वो बच तो जाएगी, वो परमेश्वर से मिलने के लिए हवा में ऊपर उठा ली जाएगी और परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। वे बचे हुए यहूदी होंगे जो कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद पृथ्वी पर रहेंगे। परमेश्वर उन तीनों पर इन इब्रानी पुरुषों की तरह उन पर सील लगाएगा और उन्हें महाक्लेश की आग से गुजारेगा। अतः दानियल की कहानी में वो कलीसिया का एक सुंदर प्रतीक है। अब अध्याय 3 का 8वां पद देखिए। दानियल अध्याय 3 पद 8 से लेकर 13 तक। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा तू चिरंजीव रहे। हे राजा, तूने तो ये आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वो गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वो धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिए जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम कुछ यहूदी पुरुष है जिन्हें तूने बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर, क्रोधी स्वभाव के वृद्ध व्यक्ति, ने रोष और जल जलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। ये पुरुष हमेशा गुस्से में रहता है। दानियल अध्याय 3 पद 14 से लेकर 18 तक। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, सो क्या तुम जानबूझकर ऐसे करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर, जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। परमेश्वर सामर्थी है, जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो हमें तेरे धधकते भट्टे से बचा सकता है, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा लेगा। यदि ऐसा नहीं भी होगा तब भी हम तेरे देवता की सेवा नहीं करेंगे, हम तेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। अंतिम उत्तर। इन लोगों का परमेश्वर के प्रति समर्पण महान था। परमेश्वर अगर हमें छुड़ाना चाहता है तो वो सक्षम है, और अगर वो नहीं बचाएगा तो भी हम दंडवत नहीं करेंगे। नबूकदनेस्सर, हम तुम्हारी आज्ञा या धमकी से नहीं डरते। तुम हमें डराने की कोशिश मत करो। हमारा भरोसा परमेश्वर में है। हमें कोई चिंता नहीं, हम केवल परमेश्वर के निष्ठावान हैं। दानियल अध्याय 3 पद 19। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया, और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। मेरा मतलब है कि इन तीनों के प्रति उसका पूरा व्यवहार ही बदल गया और वो भट्टी को 7 गुना ज्यादा धधकाने की आज्ञा देता है। दानियल अध्याय 3 पद 20 और 21। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, आंगरखों, बागों और वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। इसराइल में आप आज ऐसे बहुत से रूढ़िवादी यहूदियों को छोटी काली टोपियों, काले कोट और काली कमीजों में देख सकते हैं। वे ज्यादातर एक काली कमीज के साथ आधा पतलून पहनते हैं और उनके घुंघराले बाल लंबे होते हैं। वे हसीडिक्स कहलाते हैं। जब राजा नबूकदनेस्सर उन्हें उनकी टोपियों, उनके कोट और कमीजों के साथ बांधने का वर्णन कर रहा है, तब मेरे दिमाग में इन हसीडिक्स यहूदियों की तस्वीर उभर आती है। हो सकता है इनमें अंतर भी हो। दानियल अध्याय 3 पद 22 से लेकर 25 तक। वो भट्ठा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग के आंच से जल मरे, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नेबुकदनेज़र राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच तीन ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हां राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि चार पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। क्या ही अद्भुत उत्तेजक अनुभव है! परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, उसका हाथ हमें धधकते हुए भट्टी से छुड़ाने में सक्षम है, और इसलिए यहां वे आग के बीच में टहल रहे हैं। दानियल अध्याय 3 पद 26 से लेकर 28 तक। फिर नबुकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासो, निकलकर यहां आओ। ये सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने, जो इकट्ठे हुए थे, उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नबुकदनेज़र कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत बेचकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर उसी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना वो दंडवत ना करेंगे। आप देखिए, नेबुकदनेज़र यहां एक दूसरी घोषणा करता है। दानियल अध्याय 3 पद 29 और 30। इसलिए अब मैं यहां आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बाबुल के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। अतः वृद्ध नबुकदनेज़र क्रोध करने और आज्ञा देने में एक रोचक व्यक्तित्व रखता था।